کا مطالعہ کریں. پہلی بات تو یہ کہ آپ سب حضرات جو ایک کتابچہ حاصل کر لیں. یہ جیسے پہلی بات آئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی جتنی کی 40 سالہ جو بھی مسائل ہیں اس کا حاصل لے سکتا, اسے بہت اہمیت دی جاتی ہے. اگر آپ کو پڑھنے میں مشکل لگے تو اس کے لیے بہت سارے اس کے احسان کر کے بھی لکھا گیا ہے, قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں, یہ نام ہے مطلب سے کتاب کا. لیکن میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بنے کوچ میں تو یہی کتاب کا پڑھیں جو علم ہے, اور اس میں جو ہے وہ کافی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں جو ہے بیان کی گئی. پھر ہم نے کچھ موضوعات کا الحمد للہ کل موقع ملا تھا تو ہم نے پڑھا, مطلب یہ کہ قرآن کی عظمت کیا ہے, موٹی موٹی بات تھوڑی سی دہراوے تو اس میں یہ ہم نے سمجھا کہ بہرحال قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ہے, اور اس کا مقام مخلوقات سے بلند ہے. جتنی بھی اللہ کے علاوہ جو چیزیں وہ مخلوق ہیں, لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے. یہ اس سے بلند تر جو ہے وہ عظمت کا درجہ قرآن کو حاصل ہے. اور تو اب پھر بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں, انگنت ہیں, لیکن نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہم نے سمجھی؟ وہ نعمت ہدایت ہے, اور قرآن عظیم اس نعمت کی تھوڑی ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ قرآن سے حاصل ہوگی. ایک عام انسان کے لیے اور بھی ذرائع کہ ایمان اہل ایمان لوگوں کا ساتھ, انبیاء کرام کا ساتھ, صحابہ کرام کی سیرت, اس سے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے, لیکن خود ان ہستیوں کو ایمان کہاں سے حاصل ہوا؟ وہ اس قرآن سے حاصل. تو عوام کے لیے تو اہل ایمان کے ذریعہ بن جاتے ہیں, لیکن خواص کے لیے جو ذریعہ وہ صرف قرآن ہی, جہاں سے ایمان اور ہدایت حاصل ہوتی. اسی طرح سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے عظمتوں کا سارا سلسلہ اپنی کتاب کے ساتھ وابستہ کر دیا, اس میں چاہے وہ دن ہو, چاہے مقام ہو, چاہے افراد ہو, چاہے اوقات ہو. میں ہم نے سمجھا تھا کہ جو چیز اس کتاب سے وابستہ ہوتی ہے وہ عظمت کو حاصل کر لیتی. انسانوں کے لیے آپ بھی عظمت کے سلسلے جو ہیں کھلے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری شریف کی موجود ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اسی طرح قوموں کے لیے موجود ہے کہ جو قوم اس کتاب کو کھاتی اللہ تعالیٰ اسے عروج ادا کروائے, اور جو اسے نظر انداز کرتے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیں گے. اور ہم نے کہا کہ یہ سلسلے دنیا ہی تک نہیں ہے, بلکہ اس کے بیونڈ بھی یہی معاملہ ہے. آخرت میں بھی یہ قرآن گئے, یا تو ہمارے حق میں اجت ہوگا یا ہمارے اگینسٹ اجت ہوگا. اور قرآن اجت لگا ہوا ہے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, تو عظمت منزلت کامیابی کا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ثابت ہے. پھر بات ہم نے سبھی کے قرآن مجید کے حقوق ہیں. اب یہ کہاں سے یہ عمل کر لیے گئے, یہ کس طرح, تو قرآن کی آیات بھی موجود ہیں جن میں یہ علیحدہ علیحدہ وہاں سے جوڑ سکتے ہیں. پھر ایک حدیث کی دہی تھی کہ اس کی ہم نے پڑھی, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اہل قرآن, قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لو, بلکہ اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کہا کہہ دینا اور رات کے شروع میں, اور اسے چہار چاند کے عالم میں پھیلاؤ, خوب دینا لے کر اس کی تلاوت کرو, اس پر غور و فکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو. تو اس میں بھی کئی جو ہے یہ قرآن مجید کے حقوق آ گئے. تو انہیں کو تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ بتایا کہ یہ اسے کرنے والے, ان کے بغیر اس نے عظیم انعام کا جو ہے حق ادا نہیں ہوگا. تو وہ کیا چیزیں؟ پہلی چیز یہ کہ قرآن کو مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کتاب اور کلام میں کیا فرق ہے؟ یہ ہم شروع میں بالکل وجہ بھائی نے اس پر آپ سے بات کی تھی, جو بالکل دورہ ترجمہ کا یہاں پر آغاز ہو رہا تھا, اس میں بتایا گیا تھا کہ لکھا ہوا لازم ہوا, بلکہ الفاظ کی صورت میں جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے قلب پر سے نازل کیا. ہاں یہ بات درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ سے صحابہ کرام کو حکم دیتے رہے کہ وہ اسے تحریر کر دیں, اور ابتدا میں یہ تحریر جو ہے بکری ہوئی تھی, کہیں درخت کی چھال پر لکھ لیا, کسی چوڑی ہڈی پر لکھ لیا, کسی جھنڈے کے ٹکڑے پر لکھ لیا. پھر بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کتابی شکل میں مرتب کی گئی, پھر حضرت عثمان کے دور میں ایک رسم الخط پر جمع کی گئی, اور پھر وہی رسم الخط جو ہے وہ آج تک جو ہے چلا رہا ہے, جسے رسم عثمانی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, اور یہ آج تک کی تاریخ گواہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, 1400 سال کے لیے اسی طرح موجود ہے. और क़यामत तक जो है ये इसी तरह महफूज रहेगी। फिर हमने समझा कि ये हुकूम जो है उनका किस तरह होंगे, मानने का हमने समझा कि ये दो अल्फाज कुरान में मिलेंगे, इस पर ईमान लाओ और इसकी तादीम करो। तो ईमान का हमने समझा कि यहाँ ईमान हकीकी मुराद है, ज़बान पे इकरार ही जैसे यकीन हो कि वाकई इस किताब में दुनिया आखिरत की भलाई है, कामयाबी है, और जिस चीज़ का दिल में यकीन होता है अमल उसकी समझ चुके इसी तरह से अमल उसके खिलाफ हो। अगर अमल खिलाफ है तो इसका मतलब ये है कि दिल में यकीन नहीं। वहाँ एक चीज पे लिखा हुआ है कि ईद के दिन उर्दू का पेपर है, तो अंग्रेजी याद करके अगर आदमी जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके एक चीज पर या तो यकीन नहीं है, वरना ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो इस तरह का, तो जिस चीज का यकीन होता है उसके खिलाफ अमल नहीं। अगर ईमान दिया है तो उसका लाजमी तकाजा क्या होता है, जब माने कि अल्लाह की किताब है तो उसकी तादीम, उसकी इज्जत आपसे आप उसका लाजमी तकाजा है। ये तो ईमान का जो है बिल्कुल आप कहें कि उसका असला तकाजे ही होगा, ईमान होगा तो इज्जत का तादीम ही होगा। और इज्जत और तादीम का एक वो तरीका है जो हमें माशरे में बहुत आम नजर आता है, वो भी जरूरी है, जाहिर तरीका है कि कुरान को चुमा जा रहा है, कुरान रखा जा रहा है, सीट तक करने के लिए हम दोबारा नहीं करते कि सीट हो जाए कुरान की तरफ, लेकिन जो है वो इतना ये इज्जत इतनी बढ़ गई है कि ये कुरान से यानी हमने उसमें हिजाब का बाइस इसे बनाया, तो ये कुरान ही इज्जत कम करती है। लेकिन कुरान की इज्जत जहाँ जाहिरी मतलूब है वहाँ बाकी इज्जत भी, जब मान अल्लाह की किताब है तो उसका वो सबसे करीबी किताब हमारी होनी चाहिए, जिससे हम आज सबसे करीबी ताल्लुक हो। तो लेकिन आप हमारे माशरे में देखेंगे तो हम अपने घरों का देखें अलहमदिल्ला जो लोग यानी अब वापस हो रहे हैं उनमें तब्दीली भी आ रही है, लेकिन अमूमन अक्सर बेहतर हमारे घरों में जिस किताब में सबसे ज्यादा गर्द करीबी होगी वो कौन सी होगी, पुराने हकीम होगा बात अल्लाह, ये हमारी कैफियत है। इतने ऊपर रखते हैं कि आज ही ना पहुंचे बताने की रहमत ही ना हो, और वो तो पढ़ना तो है ही नहीं अभी, तो इसलिए जो है वो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा गैरमूत किताबों में से पुराने हकीम होते हैं। मसाजिद में ये हाल है कि मसाजिद की अलमारियाँ पुराने पास से भरी हुई है पढ़ने वाले मौजूद, बल्कि जो है वो अक्सर कमेटी वालों को मना करना पड़ता है कि भाई मजीद कुरान ना लेकर आओ, पहले ही जो है कोई कई बार खत्म हुआ। तो ये हमारी कैफियत है, हमारा ताल्लुक कुरान के साथ क्या है, अगर गौर करें नज़र डालें हम अपने यानी कुरान के ताल्लुक पर तो क्या नज़र आता है। पहली बात जो हमने पिछली दफ़ा भी बताई थी कि मुसलमानों की अक्सरियत कुरान को नहीं पढ़ती, जो लोग पढ़ते हैं तो वो कब पढ़ते हैं जब कोई जो है मौत घर में हो जाती है, सारे सवाब भी नहीं पढ़ा जाता। इसके अलावा जितनी यानी जमानात कुरान के होते हैं वो भी हम अगर जहन में ताजा कर लें, नया बिजनेस शुरू किया है, नई दुकान बनाई है, नया घर बनाया तो बरकत के लिए वहाँ तिलावत कर ली जाती है, बच्चा पैदा हुआ है तो उसका जो है बच्चे उससे रहने का जो वाक्य है बेटी को रुखसत कर रही है तो क्या होता है कुरान का साया जो है कर दिया जाता है, जहन में कुरान जो है धोखा तो दे दिया जाता है। अब बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नाम जो है निकालने के लिए पाल के तौर पर कुरान का इस्तेमाल कर दिया जाता है, और जब लड़ाई झगड़े शुरू हुए तो कसम उठाने के लिए और जो है वो इस तरह के मामला के लिए कुरान इस्तेमाल कर दिया, या कोई बीमार हो गया कोई मुसीबत आ गई तो उसके लिए तावीज और इस तरह की रीति के तौर पर जो है कुरान का इस्तेमाल कर दिया अल्लाह फैसला, वरना जो है हमारी जिंदगियों में कुरान को जो है वो कोई अमल दखल हासिल नहीं। तो इसी पर जो है मौलाना ताहिरुल कादरी ने बड़ी अजीम नज़म कही, और नज़म का अनुवाद इतना अजीब है कि मेरा अपना तजर्बा है कि एक दफ़ा ग्रस्त में नज़म पढ़ा था, नाम उन्होंने रखा है कुरान की फरियाद। तो मेरे साथ एक और साथ सफर कर रहे थे, उन्होंने एतराज किया कि यह कैसी कह दिया कुरान का फरियाद, यानी उनके दिल में कुरान की अजमत तो बहुत है और ये गोया उन्हें बुरा लग रहा था कि फरियाद का लफ्ज़ कुरान के लिए क्यों इस्तेमाल करें। लेकिन हकीकत यही है कि अगर कुरान की तरफ से अगर बात की जाए तो वही तसव्वुर सामने आता है कि जमाने बड़े जा रहे हैं लेकिन जितना नज़रअंदाज कुरान को किया जाता है चाहे नहीं किसी और चीज़ को हम कहें, और बड़ा अजीब जो भी सब सामने आता है यानी इस वक्त जो है बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है दुनिया में, और ये वो किताब है एक तो अक्सरियत ये नहीं पढ़ी जाती, उसके बावजूद तमाम बाकी किताबों में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान की है। कम से कम नमाज में तो पढ़ना ही पड़ता है। तो जो है देखिए, सबसे ज्यादा बगैर सबसे पढ़ी जाने वाली किताब भी अगर मालूम की जाएगी तो यही किताब। तो ये हमारे ताल्लुक है कुछ जरा मौलाना साहिब कादरी साहब की जबानी भी अगर हम सुने, वो फरमाते हैं, सांपों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, माफ कीजिएगा, भारेलो गाड़ी। अच्छा, तो मैंने एक राज्य रहते हुए वही था, बीस साल ये बहुत आजकल चल रहा है। मारेगुल गाजी साहब बहुत बड़े जो है वो आलिम गुजरे और बहुत बड़ा उनका नाम है, उनकी ये नजर मारेगुल गाजी साहब। सांपों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो के दिलाया जाता हूँ, जो सात हीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के की बारी होती है खुशबू में बताया जाता हूँ, जिस तरह से तोता पहला तो जन बोल सिखाए जाते हैं, उस तरह बनाया जाता हूँ, उस तरह सिखाया जाता हूँ, जब पौधों कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ, दिल सोच से पानी रहते हैं, आते ही जन्म होती ही नहीं, कहने को मैं एक एक जलसे में पल पल के सुनाया जाता हूँ, नेकी से गलती का मतलब है, सच्चाई से बढ़कर होकर एक बार आया जाता हूँ तो आबाद उलाया जाता हूँ, ये मुझसे अकीदत में डालो कानून पे राजी लहरों पे, जो भी मुझे रुतवा करते हैं ऐसे ही सताया जाता हूँ, किस बस में मुझको बार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझका भी कोई मजलूम नहीं। तो आप ही हकीकत है, उन्होंने तस्दीक के लिए हमारे सामने कि हमारा तालुक है क्या, तो तोता मैना की तरफ, अब वो तोता वो जज्बात बोल तो लेता है लेकिन उसे पता नहीं होता वो क्या कह रहा है, लेकिन वो बोल देता है, बहुत कुछ है कि तोता जो है ये बोलने वाला करता है, उसकी तरह से हमें कुछ नहीं होती। इसी तरह हम भी जो है अस्पताल रखती है मुराद के बोले चले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं मांगे क्या है, तकाजा क्या है, हुक्म अल्लाह ताला चाहेगा, उसकी कोई मर्ज नहीं। और वही मामला है तस्वीर रखने व्यंजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है या कसम उठाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वरना एक कल्चर एक जमाने तक बना होता तो वो भी खत्म हो गया, क्या काम का आगाज कुरान से कहना है, अब वो कम होता जा रहा है, वो भी जो कोई ताल्लुक था वो खत्म हो गया। हद तो यही कि पहले यानी मेरे चर्चा वगैरह बताते हैं कि यहाँ तक कि फिल्म का आगाज होता था, सीनियर में बैठे हुए फिल्म स्टार्ट हो रही है तो वो भी कलाम पाक की तिलावत से हो, टीवी का भी ये हाल है, यानी आवाज में प्रोग्राम तो इंतजाम होते ही है, पहले बसीरत आखिर में आता था प्रोग्राम, तो आवाज और इंतजाम पर कुरान पढ़ना बीच में सारी तरफ आ, तो हमारा यही काम रह गया है कि हम आवाज करते हैं तो बरकत के लिए महज जो है किताब से ताल्लुक जोड़ दिया, फिर हमारा जो है कुछ मामला जो है किताब ही रहता, अलहमदुल्ला कुछ चीज़ें हम जो है पिछली दफ़ा बनाए, ईमानदारा जो है उससे क्या मुराद है, कुरान की तादीम इस तरह तरीके से पढ़ना, पढ़ने के लिए तिलावत का क्या मफहूम है, पीछे पीछे आना फॉलो इन लेटर इस तरह, और इसी तरह से जो आला दर्जा है जिसका कुरान में भी दिखा है तहतीब, तहतीब किसे कहते हैं, नमाज से खड़े होकर ठहर ठहर कर इनकी कायद पढ़ना और उसके अकदाब को दिल पर कल को जान पर महसूस करते जाना, और ये असल तरीन तरीका है तिलावत। और इसी तरह पढ़ने के बारे में हमने कई बातें और समझनी, तजवीद का ख्याल रखना, रोजाना का मामूल बनाना तिलावत को, ज़ाहिरी बातें आदाब का कुरान के ख्याल रखना और कुरान को हिफ्ज करना और तरतीब के साथ पढ़ने की कोशिश करना, तो ये मजीद चीज़ें आ जाती हैं कुरान को पढ़ने के लिए। इसकी कुरान को समझना, कुरान को मान लिया है पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इसका फायदा उसी वक्त होगा जब उसे समझे, वरना वो बस सवाब बहस हासिल हो रहा है, जिंदगी में तब्दीली नहीं आई। सहाबा किराम का क्या हाल था, कुरान की जल आई थी तुम ये उनकी जिंदगी बदल दी, हम पूरा पूरा कुरान खत्म कर लेते और जैसे थे रहते ही रहते, नमाज से पहले जो कि अच्छी थी वही नमाज की बात है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमें समझ कुछ नहीं आता, जैसे कोरे गए होते वैसे ही कोरे वापस आ जाते, तो ये फर्ज हुआ पड़ेगा जब हम समझकर करेंगे कुरान, फिर पता चलेगा कि क्या तकलीफ है। कुरान बार बार आरोप करा रहा है अल्लाह ताला का किताब की अजमत جس پر ان کے احساس آتے ہیں. قرآن بار بار جو ہے دنیا آخرت کا کمپیریزن رکھا ہے, قیمتی چیز کیا ہے, معمولی چیز کیا ہے, تو وہ جو ہے کمپیریزن کھلتا ہے اگر ہم سمجھیں گے. نہیں سمجھیں گے تو وہ کانچ کے ٹکڑے ہی کو ہیرا سمجھنے ہوں گے اور ہیرے کو جو ہے وہ کانچ کا ٹکڑا سمجھنا. یہ سمجھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اس کی زندگیاں اچھی ہوئی. اس کے دو درجے ہم نے سمجھے, ایک تذکر, ایک تذکر. تذکر سے سری بڑھ کر مفہوم حاصل کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, کیا اسلامی تعلیمات ہیں, کیا رول ہے لون سے, کیوں اس آدمی کی تعریف کی, کیوں ان لوگوں کا جو ہے اس کا انکار کیا, اس پر عذاب آیا. تو یہ چیزیں سمجھ لینا تذکر ہے. اور تذکر کے لحاظ سے قرآن بہت اچھا ہے, اور اس کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے تذکر کی. تذکر کے لیے تھوڑی بہت ایسی جو ہے میں اس کی قسمت کافی ہے, اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے ذرائع موجود ہیں, ترازو کر کے جب جیت کر کے جو ہے کسی قدر آپ ہے. بس اگر اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ قرآن کا موٹا موٹا مطلب آپ سمجھ لیں بس بغیر ٹیکسٹ کے نظر اٹھائے, تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہو جاتا ہے. آدمی پڑھ رہا ہو اسے موٹی موٹی بات سمجھ آتی, جب آپ ٹیکسٹ کے نظر ہٹا کے ترجمے میں جاتے ہیں تو پھر اس میں بھی کافی جو ہے فرق آ جاتا ہے. تو اتنی استعداد آدمی پیدا کرے اپنے اندر کہ کم سے کم جب مثلا پڑھ رہا ہو تو ایک ہلکا پھلکا ترجمہ سمجھ رہا ہو. اس سے آپ کے احسان ہے, بہت زیادہ روم کی ضرورت نہیں, بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں, بہت ساری ہلکے گیٹس موجود ہیں جن کے ذریعے تذکر کا عمل ممکن ہے. تذکر کیا ہے؟ گہرا غور و فکر, اس کی قرآن کی آیات میں غوطہ لگا کے گویا علم و حکمت سے موتی لانا, مسائل کا حل معلوم کرنا. جو ہے وہ اب جیسے مسلمانوں کی جو مسائل ہیں ان کا جو ہے دین سے حل تلاش کرنا, یہ سب غور و فکر, یہ سب تذکر کا معاملہ ہے. غور و فکر اس کے لیے جو ہے کئی علوم کی ضرورت, ان میں کیا کیا ہے ہر چیز جو ہے نا کہ اصول معلوم ہونے چاہیے, بلکہ گہرا ذوق ہونا چاہیے ہر چیز زبان میں. اور اس میں دور جاہلیہ جو کہلاتا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو لٹریچر تھا اس میں بھی نظر چاہیے, جو زمانے کے عجیب, اس زمانے کے شعرا الفاظ کو جس طرح استعمال کرتے تھے, اس میں قرآن پر نظر ہونی چاہیے, اس کی تفسیر پر نظر ہونی چاہیے, اصول تفسیر معلوم ہونے چاہیے, پورے حدیث کے مجموعے پر نظر ہونی چاہیے, اصول حدیث معلوم ہونے چاہیے, فقہ اصول فقہ کا معلوم ہونا چاہیے, اور نہ صرف یہ دینی علوم کا پتا ہونا چاہیے بلکہ اصلی علوم کی بھی سمجھ ہونی چاہیے, تاکہ آپ ان کے مسائل کو اخذ کر سکے, صحیح غور و فکر کر سکے. تو تذکر کے لحاظ سے قرآن آسان کتاب نہیں, چند سال نہیں بلکہ پوری پوری زندگیاں کافی نہیں ہیں, اور کوئی بھی انسان جس نے بہت پوری زندگی کیوں نہ لگا دی ہو وہ کبھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کہہ سکے کہ میں نے غور و تذکر کر لیا اور قرآن کی تمام چیزیں مجھ پر کھل گئی. بلکہ ایک درد تھا, اس میں ڈاکٹر عطا احمد صاحب کا تعارف کرایا گیا, اور جو تعارف کرا رہے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں قرآن پر عبور آ گیا. ڈاکٹر صاحب نے آ کر سب سے پہلے اس کی وضاحت کی کہ کوئی آدمی قرآن کو عبور نہیں کرتا. عبور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دریا کے دو بات ہیں, تو قرآن تو اتنا بڑا سمندر ہے جیسے کوئی انسان عبور کر ہی نہیں سکتا. تو یہ عبور جو ہے سورت میں حاصل نہیں ہو سکتا, تذکر جو ہے لحاظ سے آسان ہے. لیکن سورہ محمد آیت نمبر 24 میں ہم نے یہ حکم سمجھ لیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں کیا ہو کہ وہ کیوں نہیں قرآن کا تصور کرتے, یا ان کے دلوں پر حکم لگے گئے, کالے لگے. وہ یہ مطلب یہ کہ اپنی اپنی استعداد, اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق غور و فکر بھی ضروری ہے. آدمی غور و فکر کرے اپنی صلاحیت, لیکن لحاظ سے قرآن مشکل. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تذکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹیز بنائی جائیں اور اس میں کوئی سبجیکٹ جو ہے وہ قرآن ہے جی, ہر اسٹوڈنٹ کے لیے قرآن جو ہے پڑھنا لازمی ہو, اور اس سے ریلیٹڈ پھر باقی چھوٹے کیوں, جیسے جو ہے وہ میتھمیٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہو, پولیٹیکل سائنس کا ہو, اکنامکس ہو, سائنسز ہو, وہ سب پڑھ رہے ہوں لیکن ان کا ایک میجر سبجیکٹ قرآن ہو, اور ہر آدمی اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ قرآن میں بھی اس سے متعلقہ جو آیات ہے ان پر گہری غور و فکر کر رہا ہوں, یہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سپورٹیو ہے تذکر کے. ہوتا ہے کہ ایک انسان کا بیٹھ کر اس طرح کرنا جو ہے وہ اپنے انفرادی طور پر, لیکن اجتماعی طور پر اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے. پھر اگلی بات آئے گی عمل, قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا اور جب ترمذی شریف کی روایت بھی ہمارے سامنے آ گئی جو قرآن کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لے اس کا قرآن پر کوئی ایمان ہی نہیں جو ہے قرآن کو مانتے ہیں عمل بھی الحمد للہ ہم نے کسی دفعہ سمجھا دو رخ ہیں اس کے انفرادی اور اجتماعی انفرادی معاملات میں جیسے ہی اللہ کا حکم آیا فوراً عمل کی جو ہے وہ ضرورت ہے کوئی آنے روکنے والا نہیں ہے قرآن جو ہے وہ حکم دیتا ہے نماز کا تو نماز ہمارے اختیار میں اسے اختیار کرنا چاہیے خدا نہ خاصہ اگر کوئی ساتھی ایسے ہیں جو چار وقت کی نماز نہیں ہے تو پھر پوری کوشش کرنی چاہیے نہیں اللہ کا حکم پانچ وقت کی نماز کا ہے تو پانچوں وقت نماز پڑھی جائے ورنہ جو معاشرے میں حال ہے وہ ہمارے سامنے عید کی نماز میں بچہ رو رہا ہوتا ہے اور وہ آپ دیکھیں گے آپ نے کبھی جا کر بڑے مجمع میں نماز پڑھی ہو چھوٹا بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے نماز شروع ہوتی اور وہ دیکھتا ہے میرے ابو کو کیا ہو گیا یہ کھڑے ہو گیا جس طرح سے اور یہ کچھ بول نہیں رہے یہ سن نہیں رہے اسے کبھی دیکھیں گے اسے والد صاحب کو نماز پڑھتی تو یہ کیفیت دیکھ کر جو ہے وہ روتا ہے وہ سیکھتا ہے تو ایسا معاملہ نہ ہو یہ کسی نے مجبور نہیں کیا ہوا نماز کا تو نماز آدمی پڑھے اسی طرح انفرادی معاملات میں جو بھی احکامات آ رہے ہیں سچ بولے جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے چغلی نہ کھائے دھوکہ نہ دے بیماری نہ کرے یہ ساری چیزوں پر بے ایمانی کا مطلب یعنی جو ہے وہ کسی کا ناحق مال نہ مارے تو ان سب کا فوراً عمل کیا جائے لیکن کچھ احکامات ہیں اجتماعی زندگی کے مطابق مثلاً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاشرے میں عزت اور عزت کا کیا معیار ہے کیا چاہتا ہے خدا اللہ کیا چاہتا ہے جن لوگوں کی عزت و معاشرے میں کون جو ہے وہ کم عزت والے جی اس کا معیار ہو تقوا لیکن معاشرے میں کیا ہے رکیا تقوی کی جگہ تو اس معیار کو میں اور آپ چاہے تصدیق کرنے اکیلے تو یہ ممکن نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاشرے کے بے معیار یعنی معاشرے ختم کی جائے معیار آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں پورے ملک میں ہمارے حج میں نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قاتل جو ہے اسے اس کے احتساب میں قتل کیا جائے اور اگر معاف کرنے کا اختیار دیا جائے تو کسے حاصل ہے اس کے ورثہ کو حاصل ہے کسی ملک کا پریزیڈنٹ اور کوئی بڑے سے بڑا آدمی جو ہے اسے اختیار حاصل نہیں ہے کہ قاتل کو معاف کرے یہ اختیار سے ورثہ کو حاصل ہے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ اختیار جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو دیتا ہے وہ چاہے تو معاف کر دے قاتل اسلام نہیں دیتا وہ والدین کو دیتا ہے وہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو اتوار لے لیں چاہے تو کتاب پہ جان لیں اسی طرح قرآن حکم دیتا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ لیا اس کے اصول ہے کہ کیسی چوری ہوگی کیا حالات ہوں گے کیا ہوگا میرا لیکن اگر وہ سارا کرائٹیریا پورا ہو رہا ہو تو قرآن کا حکم کیا ہے ہاتھ کاٹ لیے تو اس پر میں اور آپ تو اکیلے اکیلے عمل نہیں کر سکتے تو ایسے احکامات کے لیے کیا کیا جائے مل کر جو ہے وہ اس کی جنہیں جو ہے نافذ کرنے کی جد و جہد کوشش کی جائے پیسے جو بنا لیں ان شاء اللہ آئندہ ہم سمجھیں گے میں نے انقلاب نبی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کس طرح کیا اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جہاں انفرادی گوشے میں اللہ کے حکم کو بالا رکھے ہیں اسی طرح اپنے اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کے حکم کو بالا تر کرنے کی جد و جہد کریں کوشش کریں یہ کوشش اور جد و جہد کرنا ہمارے اوپر جو ہے ضروری ہے پہلے ہاں اسے اس طرح کر دینا پڑتا ہے غیر وہ ہمارے اختیار کے لیے جب اللہ چاہے گا انقلاب ہو جائے گا لیکن دین کے رقبے کی کوشش جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہماری نہیں ہے تو یہ معاملہ ہے جس میں سورہ مائدہ بہت اہم ہے لحاظ آپ پوری صورت پڑھیں گے تو شریعت کے تکمیلی احکامات لیکن اس میں پوری صورت کے اندر شریعت اور نفاذ شریعت پر بات ہو رہا ہے کہ شریعت کو نافذ کے اوپر اللہ کے احکامات کو غالب کیا ہے اسی میں تین آیات جو ہے وہ آتی ہیں تین معنوں میں اور یہ گویا اگر آپ کہیں تو اللہ تعالیٰ کے بتاوا ہے جو ایسے نہ کرنے والوں پر جو ہے وہ پورے پورے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں یہ آیت نمبر 44 ہے آیت نمبر 45 میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے اور ظالم ہم نے کسی کا مشرک تو اس کا ترجمہ آپ کو یوں ہی ملے گا کہ یہ بھی تو مشرک ہے اللہ کے ساتھ شرک کریں اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ایسے احکامات کو اختیار کریں اور کیا بھی مجھے انہیں مان لیں اس پر زندگی چلا رہے تو یہ اسی تو مشرک ہے तरह तीसरा सूरह माईदा की आयत नंबर 47 वमन लम यहकुम बिमा अनज़ल अल्लाह फर उलाइका हुमुल फासिकून। जो कोई अल्लाह के नाज़िल करदा अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करते वही लोग तो फासिक हैं। तो ये तीन तकदीर जो है बनाए आसान है, काफिर ज़ालिम और फासिक, वो लोग जो अल्लाह के नाज़िल करदा अहकामात के मुताबिक गैर अपने मामला नहीं करा। तो इन अगर फतावा से बचना हो सकते हैं इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो अगर बचना चाहते हैं तो कोशिश करें। सूरह माईदा 44, 45, 47 काफिर ज़ालिम फासिक इसमें भी है, भला आप नोट कर लें। सूरह माईदा आयत 44, 45, 47 काफिर ज़ालिम और फासिक के फतावा मांगे। इन पत्तों से बचना चाहते हैं, इनसे निकलना चाहते हैं, तो जिद्दोजहद करनी होगी इज्तमाई निज़ाम के लिए। अगर ये जिद्दोजहद नहीं करें तो ये हमारे ऊपर जो है सीधे सीधे आ जाए। अब ये कोशिश जाहिर है जो है वो अकेले आदमी के बस की चीज़ नहीं है कि पूरे निज़ाम को बदल दें और जो है वहाँ ये जो है तब्दील किया जाए, उसके लिए इज्तमा की ज़रूरत होती है, बेहतर काम करने की ज़रूरत होती है। इंशाअल्लाह से मज़ीद आगे बातें करेंगे। तो ये बात आगे अमल करने में हर मौज है और हमने ये समझा था हाथ आप चीन के माध्यम से कि ये पुख्ता करना मुराद होता है। असल में तो कुरान ने फैसला कर दिया कि इन्हें हुक्म इख्तियार इनका, हुक्म देने का इख्तियार किसे है, फैसला करने का इख्तियार किसे है, इंसानों के लिए कानून बनाने का इख्तियार किसे है, तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो ये जो तरह हुक्म की ये इंसानी सोच के लिए इस्तेमाल होती है, जो सोच उसके अमल के लिए फैसला हो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन चुनता है तो वो एक फैसला पहले निर्णय करता है कि मुझे क्या करना है। तो ये जो है कि वो आए तो उनके फैसले पर अगर अल्लाह हो तो वो कब के मानों में आ जाते। इसी तरह एहसावत अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने होने वाले पहले की कोशिश कर। का पांचवा आप क्या है जिसे दूसरों तक पहुँचाया जाए, ये क्यों है जनाब? क्योंकि हमें मालूम है कि अब किसी और नबी का जो है वो कोई और नबी आने वाले नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उनके बाद जो है अब ये सिलसिला बंद हो गया। तो ये कुरान अल्लाह ताला की आखिरी और मुकम्मल कामिल हिदायत नामा है जो तमाम इंसानों के लिए, और इसीलिए अब ये काम जो है उम्मत का है कि वो इनके आगे पहुँचाए। और इस बात को वैसे आप देखें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बरस जो है वो मेहनत की है, वही के आवाज से ही आपने इनकी दावत का आगाज कर दिया दूसरों तक कुरान को पहुंचाना, और आपने ये काम अपनी आखिरी सांस तक किया दावत का। पूरी जिंदगी, पूरी नफरी जिंदगी आपकी 23 बरस का मुकर है, और हम अब सामने जो है कुरान की दावत का काम किया है। आप जब भी किसी के पास गए इनकी दावत के अनुसार करेंगे कुरान की आयात में, इसी के लिए जब आप सीरत की किताबों में रिसर्च भी आप कर लें तो बहुत कम खुतबात हैं जो आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते, उनमें भी जो है वो आयात की सुनाइए कुछ अल्फाज और आ गए, लेकिन ज़्यादातर आपकी दावत तब्दील क्या थी वो कुरान थी। तो कुरान आपने जो है इस तरह से पहुँचाया, और फिर जब आपने ये काम कर लिया उसकी जद्दोजहद करके लिए गालिब हो गया तो आपने जो है सन 10 हिजरी में इज्जत उल्फिज़ा जो है अदा करवाया आपने हज, और उस पर जो है आपने अपनी उठनी पर जीत करवा के 1 लाख से ऊपर सवालत में 1,24,000 के करीब जो है आपके रुफ़ा सहाबा कराम मौजूद थे, और आपने उन सबको मुखातिब करके क्या फरमाया, अदा बदलाफ़ क्या मैंने जो है वो तबलीग का अदा कर दिया या नहीं। सबने एक जबान होकर कहा था कि अल्लाह के रसूल आपने हक तबलीग अदा कर दिया, हमने अमानत अदा कर दिया, हमने शहफाई अदा कर दिया। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तू भी गवाह है कि ये लोग मान रहे हैं कि मैंने ये पैगाम इन तक पहुँचा दिया। 3 दफ़ा आपने शहादत के अल्फाज अदा किए, उसके बाद क्या हो गया, बंद जो बंद चाहे जो रुमाएगा बस जब पहुँचाए वो जो मौजूद है उन तक जो मौजूद नहीं। जमीन साहब कुछ लोगों को बुला रहे हैं, आफिल जफर खान, उस्मान अली, फारूक अहमद, साहिब साहब, जानी इकबाल, मुनीर काजी, फारूक अहमद, तो आप मिल के जाइएगा जमीन भाई। ठीक है जनाब, तो इस तरह अल्लाह के रसूल ने अपनी जिम्मेदारी किसके सुपुर्द की? इस उम्मत के सुपुर्द। वरना ये कुरान का पैगाम और इस दीन को वारिस करने की जिम्मेदारी किसकी थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए बताया जाता है कि आपकी बेइज्जत दो तरह की, एक बेइज्जत खसूसी थी वो अहले अरब की तरफ, लेकिन आप खुद भी अरब थे, खुद कुरैश से ताल्लुक रखते थे, उनकी जबान बोलते थे, उन्हीं की जबान में कुरान का नाजिल हुआ, तो आपने अरब के हद तक खुद अपने हाथों से दीन को नाफिज कर दिया। और तकरीबन 21 बरस की जिद्दोजहद है जिसके बाद इमरान साहब दीन जो है वो अरब की हद तक वाले हो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही हाथों से, क्योंकि ये दीन थे पहले अरब के लिए नहीं, तमाम इंसानियत के लिए, और नबी अकरम के इस्लाम से पहले अरब के रसूल नहीं है, नबी नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए वैसी जिंदगी तक के लिए रसूल और नबी का जो है आप पर आप ही नबी होने का दर्जा हासिल है। इसलिए फिर आलमी निज़ाम यानी दीन के आलमी रखने के काम का आगाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से किया, और इसने जो है गज़वा तबूक की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ दे गए उस वक्त की सुपर पावर जो थी रोमन एम्पायर से टक्कर लेने के लिए। 30,000 सहाबा किराम आपके साथ थे, फिर आपने खतून जो है उससे पहले सुलह उदैबिया के बाद अजराब के जितने बड़ी बड़ी रियासतें और ममालिक के वहाँ पर लीजिए, इस तरह दीन के आलमी जो गलती का आगाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हो। लेकिन हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस जमीन पर रखा जब तक चाहा, हमेशा के लिए तो नहीं रखा, इसलिए आपने इस जिम्मेदारी को खुद अदा कर दिया, दीन को अरब के अंदर वालिब कर दिया, उसकी एक्सटेंशन का काम शुरू हो गया, उसके यानी बैनुल अक्वामी गलती के काम का आगाज करवा दिया, और फिर जो है इस काम को अब इस उम्मत के सुपुर्द कर दिया, ताकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ते रहे मुसलमान ये काम करते रहे। इसलिए सूरह आले इमरान में इस उम्मत को क्या कहा गया? तुम खैर उम्मत कहा गया। सूरह बकरा में उम्मत वंश कहा गया, ये दरमियानी उम्मत भी है जो अब ये काम करने वाला काम जिसके सुपुर्द है, अल्लाह का पैगाम जो है वो अब यहाँ तक पहुँचा रही है। बकरा में माना में पहले भी समझ चुके थे, अल्लाह ताला ने इस दीन को कैसे पहुंचाया? पहले कौन था? नजर एक वास्ता है, दूसरा वास्ता कौन बने? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद ये उम्मत के हिस्से में और फिर ये पैगाम देते ही है तमाम अवामों का, जब बनी का इंसान कितना जरा तमाम इंसानियत के लिए, बनी का इंसान जो भी इंसान है उनका जो पैगाम पहुंचा है, तो ये तीन बातें मैं बता रहा था, लेकिन एक दो तो ये हिदायत की इस घड़ी के इस पैगाम में ये उम्मत और उम्मत अफसाद पर अलहदा से तो कोई चीज नहीं, तो मैं और आप मिलकर अगर हम वो काम कर लें तो ये उम्मत कर लें, और हमारा काम जो है कि दीन को आगे पहुँचाए। इस तरह जो है इससे पहले तो वो आज नहीं किया, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने एक पहुँचा दी भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उन्होंने ये पहुँचा दी उम्मत मुस्लिमा तक। मेरी आपकी जिम्मेदारी ये कहनी चाहिए अपने अपने दौर में ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा, और हर दौर के मुसलमान इसे अपने दौर में और अगली जो नस्ल आती है तक ये हमें मुंतकिल करें। तो ये काम है जनाब जो करने वाला है, उसे कुरान का भी बात कहा है जिसे पहुँचाया जाए, उसके लिए कुरान की में दो इतना तरजीब और तरजीब तरजीन तफरी बाबे तफरी से, तो इसके माने क्या है? तरजीब का मतलब होता है पहुँचा दे, और तरजीन का मतलब क्या होता है? बजन से निकला है, बाह यानून बजन जिसे कहते हैं किसी चीज को खोल देना, वादे कर देना, अब यानी इस तरह खोल देना कि अब कोई उसके बारे में इंसान ना रहे, कुछ जो है वो कोई चीज़ जो है छुट्टी भी ना रह जाए, बिल्कुल वादे करें। तो ये तरजीह दो तरह हो सकती है कुरान, एक तो तरजीह है कुरान की, कुरान के पैगाम को पहुँचाना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बहुत आम कर दी, आपने फरमाया बदले वो अन्नी बलव आया, पहुँचाओ कि नहीं जाने से अनमाए गया, एक ही आए तो चाहे एक ही आए ना कि वही आगे पहुँचाओ। तो पहुँचाना तो ये कि जितना इल्म हमें आप कुरान से जितना भी हमें इसका हासिल है उसे दूसरों तक पहुँचाया जाए, एक आयत याद है वही आगे बता दें, पढ़ना आता है दूसरों को सिखा दें, पहली बार है दूसरों को बताए, कुछ तफसीर मालूम है वो आगे कहते हैं, तो कुछ बताए कहते हैं कुरान के वो दूसरों को सिखाए। तो जितनी जितनी हमारी इस्तेदाद है सलाहियत है उसके मुताबिक ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है समझी कुरान। और पश्चिम क्या है वाजे कर देना, इसके दो दर्जे तैयार होते हैं। मिनिमम दर्जा ये है कि कम से कम जितनी भी दुनिया में रहने वाली अफवाह है उनकी जबान में आम सादा सा तर्जुमा कुरान का अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि दुनिया में कोई फॉर्म ऐसी हो जिसकी जबान में कुरान मौजूद ही ना हो और वो हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाए, जिन लोगों ने मेहनत ही नहीं की पहुंचाने का, कोई मामला ही नहीं किया। तो हमारी कोशिश होती है ये कि कम से कम हर जो काबिले जिक्र फॉर्म है उसकी जबान में एक सरसरी तर्जुमा मुस्तदर की आम फहम की तफसीर जो है वो अवेलेबल हो। इसका आला तरीन दर्जा क्या है तफसीर का, कि इस वक्त के दौर की आला तरीन इल्मी सतह पर कुरान के अहकाम को बाकायदा जो है वो इतनी दलाइल के साथ हासिल कर सकते, तो ये इसकी आला तरीन दर्जा होगा तफसीर। इस वक्त साइंस जिस रूज पर है इंसानी फलसफा सिस्टम अगर दादे क्या पर खड़ी है उसके बिल्कुल हाई लेवल पर जो है उस तालीम के और तमाम उलूम के जो है यानी आला तरीन लेवल पर पहुँच कर पुरानी अहकाम को वाली है। तो ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अब इकोनॉमिक्स ने कितनी तरक्की कर ली और कितने सारे जो है वो तरीके बने हैं, अब उन सब को समझते हुए कुरान को वादे करना कि किस तरह कुरान जो है इनसे भी बढ़कर बेहतर निजाम लगा। ठीक है, तो इस लेवल पर कुरान की तारीफ को आम कर देना ये गोया कि हाँ होगा तरकीन है कुरान का, कुरान को वादे करना। तबलीग से पहुंचाना है तफसीर वादे करना है, दोनों हुकूक हैं कुरान के नाते भी से पहुंचा दिया जाए। एक पहुंचाना कैसे होता है कि आपने कुरान का हदिया किसी को दे दिया कि भाई ये पढ़ लो, लेकिन एक होता है उसे वादे कर देना, उसे खोलना बताना, तो ये भी कुरान का है। पहुंचाने में सिर्फ जो है वो दे देना काफी नहीं है बल्कि उसकी वजाहत भी कर देना, उसे वादे कर देना उसके अंदर बात को कमी जी। तो इसके दो दर्जे सरसरी तर्जुमा अच्छा दर्जा है तफसीर कि वो अपनी जबान में समझ सके, और आला तरीन दर्जा क्या है कि इस वक्त की तहजीब की आला तरीन सतह पर इल्म तहजीब की आला तरीन सतह पर उसे ध्यान दिया जाए। इसीलिए डॉक्टर साहब की किताबें भी मुश्किल लगती हैं क्योंकि उन्होंने जो है वो म्यार जो है उसे रखा है जो आला तरीन इसकी म्यार, वो हर एक के बच्चा नहीं होता लेकिन जो है उसकी भी जरूरत वरना चीजें वाकई नहीं होती। ठीक है जी, अब इसके बाद जब ये हकूक हमने समझ लिए तो एक जो है बात पहले भी सामने आई थी सूरह जारीन के हवाले से कि अल्लाह ताला का एक असूल है जो सूरह जारीन में अल्लाह ताला ने बयान करवा दिया और गजबन आयत नंबर 7 है जिन बात कर सकते हैं बढ़ जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्ला इन शकरतुम लाजीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो हम अपनी नेमतों में मजीद इजाफा करें और अगर ना शुक्री करोगे तो क्या होगा, तो फिर हमारा आजाद भी बहुत शदीद है। ऐसा नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, करो तो बहुत सवाल है, ना करो तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, करोगे तो अल्लाह ताला अपने मजीद देगा, मजीद इजाफा करेगा अपनी नेमतों में। और नेमतों की जो है वो तुमने उन्हें नज़रअंदाज किया, उनका शुक्र अदा नहीं किया, उसका गलत इस्तेमाल किया, तो फिर जदीद सजा है जो अल्लाह ताला दे। और ये हम समझ चुके हैं शुक्र के मान में, शुक्र क्या होता है ला इन शकर तुम लाजी बनना, शुक्र करोगे मजीद नहीं। शुक्र हमने क्या समझा, शुक्र किसे कहते हैं, और इमाम राफिज इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी यहाँ पर, शुक्र क्या है, नेमत का तसव्वुर करना और फिर उसका इजहार करना। और शुक्र के तीन दर्जात हमने समझे थे, एक है जबान से कहना कि ये वाकई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी कीमती चीजें आपने दी है, बहुत अच्छी चीज आपने दी। दूसरा दिल में जो है उसका तसव्वुर करना, वाकई ये कीमती चीज, और तीसरा शुक्र मिल जवारे उसका सही इस्तेमाल करना। तो कुरान का शुक्र क्या होगा, जबान से भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला की इतनी आला नेमत अल्लाह ताला ने जो है हमें दी, और फिर दिल में भी तसव्वुर हो, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे कीमती तरीन चीज بڑی سے بڑی دولت یہ خدا نے ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو قرآن کی دولت میں سے کچھ دیا گیا، قرآن کا کچھ جز دیا گیا، اور وہ کسی دنیا دار کی کسی چیز کو دیکھ کر یہ گمان کرے کہ اسے مجھ سے زیادہ دیا گیا تو اس نے قرآن کی نہ پڑھی، فرض کریں کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ آ گیا یا قرآن کو جذب ہوا ہوا، اب آپ کسی کی چھوٹی گاڑی کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسے یہ نعمتیں گویا اس سے زیادہ ہے، تو پھر آپ نے قرآن کی نہ پڑھی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، بہت بڑی دولت ہے یہ قرآن، اس کا صحیح شکر ادا کریں۔ جس طرح سے آپ نے ایک مثال سمجھی تھی کہ فرض کریں آپ کو کسی نے بہت قیمتی جو ہے چال دی، کوئی پہننے کی کوئی جو ہے چادر دی، چار دی، اب اس کا شکر کیا ہے؟ آپ نے زبان سے کہا کہ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا تحفہ دیا، دل میں بھی آپ محسوس کریں کہ واقعی قیمتی ہے، لیکن عمل آپ نے کیا کیا؟ اس کے جسٹر بنا کے اس سے آپ اپنے جو ہے وہ برتن مانگ رہے ہیں، پر جو ہے صاف کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا حقیقت؟ اس نعمت کی نا شکری کیا، قدر نہیں، کا اصل تو یہ تھا کہ آپ اسے ریسن کرتے، کسی اچھی محفل میں اسے جو ہے استعمال کرتے، اور آپ نے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسہ صاف کیا جائے، لیکن اس لیے کی نہیں وہ جانا تھا، تو یہی ہم کام کرتے ہیں قرآن کے ساتھ، قرآن آیا جس لیے کہ ہم اسے اختیار کریں، اس کی احکامات کو سیکھیں، اپنے عمل میں اپنی زندگی میں لے کر، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ برکت کے لیے استعمال کر لیا، مردے میں پڑھ لیا، کسی کو وہ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ تمہارا تعلق قرآن سے اتنا ہے کہ مرتے ہوئے کو جو ہے یاسین سنا کر اس کی موت کی سختی کو آسان کر، تو یہ ہم نے جو ہے ناشکری کی ہے۔ تو اس کے دو رضائق ہیں، دو درج عمل ممکن ہیں، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کی ان حقوق کو ادا کر رہے ہوں گے، تو ان کے بارے میں کیا ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں بہت ساری آیتیں قرآن کی موجود ہیں، لیکن جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں سورہ یونس آیت نمبر 57 سے اللہ تعالیٰ فرمائے تمہارے پاس آ چکی ہے اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ذکر، یہ موعظہ، موعظہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو نرم کرنے والے بات ہے، ایسی نصیحت جسے سن کر جو ہے دل نرم ہو جائے، دل پر ٹیک جائے، اس کی سختی وہ دور ہو جائے، تو یہ چیز تمہارے رب کی طرف سے آج کی ہے، اس میں ہے کیا؟ وظیفاؤں سے وہاں سے صدور، اس میں تمہارے سینے کے امراض کی شفا ہے، اور بہودن، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے رہنمائی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ انسان دنیاوی معاملات سے بھی دیکھ لیں، سب سے زیادہ جو چارج کیا جاتا ہے وہ کاؤنسلنگ پہ ہوتا ہے، تعلیم، تعلیم کیا ہوتی ہے؟ ہدایت، تاکہ میرے سے ہٹ پہ کتنا انویسٹمنٹ ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تجویز کو کرنا بتاتا ہے کیا کروں، سارے چارجز سب سے بڑی دولت جو ہے یہ ہدایت ہے، جس سے اب کیا کرنا ہے، فرمایا یہ ہدایت قرآن کے ذریعے تمہیں حاصل ہے، ورحمہ اور یہ رحمت ہے، اور یہ جس کے لیے ہے یہ ساری چیزیں ایمان لانے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، تو چاروں چیزیں بہت اہم ہیں جو حاصل ہوتی ہیں اگر قرآن سے حقوق ادا کیے۔ سب سے پہلی چیز معاہدہ اپنے لفظ کو، اور یہ دل کی لرننگ بہت بڑی دور ہے، اور یہ ایک سے حاصل نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے دل سخت ہو جاتے ہیں اور اس طرف طبیعت مائل بھی ہوتی ہے، تو یہ اور یہ جو ہے وہ افراد جو ہے وہ معاہدہ کا کوشش کرتے ہیں جبکہ قرآن کو کیا کہا جا رہا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے معاہدہ ہے، تو رب کا وعدہ ہے یہ قرآن، جو سب کا ظاہر ہے کہ اثرات جو ہوں گے وہ اور کسی اور کے واسطے نہیں ہوتے۔ اسی طرح تینوں کے اولاد کی صفا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ حالانکہ آج کل لوگ ایک جو آرگینک پرابلم ہے اس کے لیے بھی استعمال کریں قرآن کی، ایسے لوگ موجود ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہر طرح کی بیماری، جسمانی بیماری بھی قرآن میں شفا والی، لیکن یہاں جو برادر قرآن ہے وہ ہماری باطنی بیماری، کہیں لاگت ہے، کہیں مفتے بندے ہیں، مفتے کیا ہے، مفتے شہوت ہے، اور بغض ہے، حسد ہے، بزدلی ہے، کمزوری ہے، سب کا علاج کیا ہے؟ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ इसी तरह फरमाया कि ये क्या है, हिदायत कर लिया, हिदायत मैंने बात कर दी कि ये सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह, और ये हो तो हर नेमत क्या नेमत रहती है, और अगर नेमत हिदायत से मारी हो तो वो क्या हो जाती है, नेमत हो जाती है। माल दौलत की बात आई थी, इस्तेदार की बात आई थी, औलाद की बात है, औलाद है तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर हिदायत से खाली है तो वो भी बहुत बड़ी इंसान के लिए दुख और परेशानी का बाइक है, वो जवान होकर खड़ी हो जाती है और जो आंखों में आंखें डाल कर बातें होती हैं, जो मामला होते हैं सबके सामने। तो फिर आगे अगली आयत में फरमाया कि कुल में फल से दौ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके कि अल्लाह का फजल है, फजल किसे कहते हैं, अजर फजल की, अजर और फजल की नहर की है, अजर जो है वो मेहनत का बदला होता है और फजल जो है वो उसके हिसाब की होती है। एक मजदूर को बुलाया कि ये 2x2 का गला खोल दो तो 100 रुपया दूंगा, उसने गला खोल दिया आप 150 रुपए, 100 रुपए तो अजर है और ये 50 रुपए क्या है, ये फजर है। तो अल्लाह ताला तुम्हारे सिर पर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ये अल्लाह का फजल है, ये कुरान की नेमत वही रहमत ही, और जो उसकी रहमत में से रहमत क्या होती है, ये अब तक आपकी घर से आने चाहिए जवाब जी, रहमत रहमत लालच की जिद है, रहमत जिस चीज की जरूरत हो वो हासिल होगा, वो होता है रहमत जिस चीज की जरूरत हो वो जो है वो हासिल हो जाना, मतलब आप चेहरा में झटके रोने से शरीर प्यासे, प्यास की वजह से जो है जान निकली जाती, कोई आदमी जो है हाथ में रखकर सोने की डबी आपको पेश कर दी, क्या कहेंगे आप, कोई फायदा नहीं होता, लेकिन उसका कोई एक ग्लास पानी दे दे तो उससे बड़ी नेमत आपको मिली, तो ये है रहमत। और आप जो है मुफलिस है, बहुत जो है जरूरतमंद है, और इसका कोई एक जग भर के पानी आपको दे दे तो अब ये रहमत नहीं आपके लिए, अब अगर वो सोने की डबी मिलती तो वो ज्यादा आपकी जरूरत, तो जरूरत के बाद जरूरत की चीज हासिल हो जाना ये रहमत। तो फरमाया कि ये नाजिल किए कि अल्लाह का फजल है बल्कि उसकी रहमत है। और आगे फरमाया कभी नारिदा पर यक रहूं, बस चाहिए कि इसे हासिल करने पर ही ट्राई, वरना जहाँ जो जिक्र आया है कानून का, वहाँ ये जिक्र आया है कि लोगों ने उससे कहा था कि अल्लाह ताला इजारे वालों को पसंद नहीं करता, कुरान ने इसे नोट किया, कुरान ऐसी बातों को हाईलाइट करता है जो जिसमें कोई हिदायत होती है, तो यह यहाँ ये हिदायत मिलती है कि अल्लाह को इजराने वाले पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला खुद ही हुक्म दे, अगर इतराना है खुशियाँ मना रहे हैं तो इस सहमत पर मनाओ, इस सहमत पर इतराओ कि मुझे कुरान से ताल्लुक हासिल होगी, मुझे कुरान से जो है नस्बत हासिल होगी, इस पर खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाने की चीज है। फिर आखिर में बहुत अहम अल्फाज है, हुआ खैरुम मिम्मा यस्मऊन, ये हर उस चीज के बेहतर है जो लोग जमा करें, लोग क्या जमा करें, माल दौलत पैसा गाड़ियाँ जमीनें जायदादें हीरे जवाहरात देवदार डिग्रियाँ, तो कुरान कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान की नेमत इन सबसे बेहतर है, सबसे बढ़कर क़यामत के दिन ये काली है कुरान खाली उन्हीं वालों में जैसे इस्तेमाल होता था, उससे कहा जाएगा कुरान पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, दर्जात जो है वो चढ़ते जाओ, कुरान की नस्बत बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह ताला सबको अदा करवाए और ये हासिल होगी जब हम कुरान की सारे जो हकूक है वो अदा करने वाले, अब बस जल्दी से इधर चलने में दीजिएगा, तो दूसरा भी जो मामला है ये काफिले रश्त हो गए, और अहदीस मौजूद है जिसने जो है कहा कि वैसे तो रश्त कहना जो है वो पसंदीदा नहीं है, लेकिन सिवाय दो अवकाश, एक वो जिसे अल्लाह ने दौलत दी और वो जिनका अल्लाह की राह में दीन के राह में जो है नेमत को दौलत को खरीद कर, और दूसरा वो चंद जिसे अल्लाह ताला ने कुरान कह दिया और वो अपने औकात उसमें बचत कर रहा हूँ, दिन रात जैसे उनको फैलाने में लगा रहा हूँ, तो ये मामले रद्द हो गए, अल्लाह ताला ने इसमें शामिल किया। अब ये हकूक ना करने वाले इनके लिए बड़ा वो इलाज देने का भी आया आपने मेरा साहब आप क्या कहें इसे दोबारा भी करिएगा 124 से 126 अल्फाज है वमन आरदन जिक्री, और जिस किसी ने ऐलान किया मेरे जिक्र से, कुरान जो है जिक्र जिक्रा ये अल्फाज है कुरान से, तो जिस किसी ने मेरे जिक्र से कुरान से ऐलान करता फ इन्ना लहू मईशतन रंका, तो बेशक उसकी मईशत को मैं तन कर दूंगा। अब यहाँ उल्मा बताते हैं कि एक तो ये यहाँ तन हो जाएगा, दूसरा ये कि करोड़ों रुपए होंगे और कोई फायदा नहीं होगा उसका। अब वो संगीन और इतमान की कैफियत जो है वो ध्यान भी सुन। तो बहरहाल अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि अगर जिन्हें एराज करोगे तुम्हारी मैशियत को तंग कर दूंगा। वजह करूँ सयामत हाँ, और मैं तुम्हें उठाऊंगा क्यामत के दिन अंधा, अभी अंधा उठेगा क्यामत से। पौधा रसी सीमा अजय सरी आमा, तो कहता मेरा मुझे अंधा क्यों उठाया, वगर तुम तो मंजीरा, मैं तो मुंह देखने वाला था, दुनिया में मेरी आंखें थी, मुंह देखता था, उसको गौरव विचार करता था क्या चीज फायदे की है क्या चीज कम फायदे की है, देखने भरने वाला था। तो जवाब आएगा पौधा कदाज का अदद का आया था, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसी तरह आए कि तुम्हारे पास नहीं आया, पर अभी था तुमने उन्हें बुला दिया था, इग्नोर कर दिया था, तुम्हारी जिंदगी में उनके लिए कोई बात नहीं था। हर चीज के लिए वक्त है लेकिन कुरान के लिए वक्त। अब अगर गौर करें तो आम रूटीन है, सुबह होते ही अखबार और कई कई घंटे अखबार के लिए वक्त मिलेगा, फिर जो है वो दफ्तर में और दुकान पे कई कई घंटे मजदूर गुफ्तगू के लिए वक्त है, मोबाइल फोन पर जो है मिस कॉल तक को हासिल करने के लिए वक्त है, और कंप्यूटर पे बैठ के कई कई घंटे नेट पर जो है ब्राउजिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, ईमेलिंग कर रहे हैं, इनके लिए वक्त है, और शॉपिंग के लिए कई कई घंटे निकालते हैं, उनके लिए मेहनत करना चलना फिरना सबके लिए वक्त है। फिर शाम को आकर जो है वो कई घंटे टीवी के सामने गुजारने के लिए वक्त है। वक्त किसके लिए नहीं है, अल्लाह की किताब के लिए वक्त है, उसे पढ़ने के लिए। किसी के कहो ये किताब पढ़ो आपको जवाब आ जाएगा, वक्त ही नहीं है जिसने मतलब। तो अगर यही हमारी हालत है जो फरमाया कि इनके पास मेरी आयात आएंगी लेकिन इन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था, बुला दिया था, फरमाया वक्त आजकल यौवन बनता, इसी तरह आज तुम्हें नजरअंदाज कर दिया गया, आज तुम्हें बुला दिया गया, अब अंधे बनकर यहाँ जो है कितने पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला इस अंजाम से हमें महफूज रखे, कुरान मजीद के हकूक अदा करने वाला बनाए। अल्लाह सवाल आया खवातीन की तरफ से, कुछ लोग कहते हैं कि आप आदि नहीं है, आप कैसे तरकीब प्यार कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एहतियात हमें करनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से बातें ना करें, कोई गलत बात जबान से ना निकल जाए, वरना ये अहकाम हर एक के लिए कुरान पहुँचाना है मुसलमान, लेकिन अपनी अपनी काबिलियत सलाहियत इस्तेदाद के मुताबिक, जिसे जितना ज्यादा इन हासिल है उतना ज्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारी। तो बड़ी जिम्मेदारी तो उनमें कराम के ऊपर आती है या उन लोगों के ऊपर आती है जिन्होंने इन बात किए, जिन्हें कम एंड है वो कम एंड को आगे पहुँचाए, लेकिन कोई गलत बात ना करें, उसमें एहतियात की जरूरत है। और नबी अकरम किस्म का युग मौजूद है कि पहुंचाओ मेरी यानी कि और भी ही आएगा, तो ये आम हुक्म है तमाम मुसलमान के शामिल हो जाते हैं।